ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। देशभर में आज 3,749 संक्रमण के नए मामले आए सामने। 3,764 हुए संक्रमण मुक्त। 19 संक्रमितों की हुई मौत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नवनियुक्त 3 मंत्रियों को दिलाई गई पद तथा गोपनीयता की शपथ। नवनियुक्त मंत्रियों द्वारा आज ही पदभार ग्रहण। नवनियुक्त अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल ने कोरोना प्रभावित देश की अर्थतंत्र को ऊपर उठाने को बताया अपनी पहली प्राथमिकता। और कोरोना संक्रमण के कारण दुनिया भर में मरने वालों की तादाद हुई 10,98,000 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। आज देशभर में 3,749 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने हैं। इसके साथ ही देशभर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,21,745 हो गई है। आज देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 36,533 है। सक्रिय संक्रमितों में से 24,194 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 12,333 लोग संस्थागत आइसोलेशन में हैं। 314 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जबकि 68 लोगों को वेंटिलेटर में रखा गया है। इसी तरह आज 3,564 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही आज देश भर में कुल संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 4,501 हो गई है। आज ही 19 लोगों की मृत्यु होने के बाद संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 694 पहुंच गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। पोखरा महानगर पालिका ने अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी सेवाओं को बंद किया है। महानगर पालिका की कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यहां से प्रवाहित होने वाली सभी सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल ने आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में पद बहाली की। रक्षा मंत्री का पद संभाल चुके मंत्री पोखरेल ने कल ही प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के मंत्री के रूप में नियुक्ति ली थी। बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रक्षा मंत्रालय के कार्यभार की जिम्मेदारी अपने पास ही रखी है। नवनियुक्त अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल ने देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना संक्रमण के बावजूद ऊपर उठाना अपनी पहली प्राथमिकता बताई। अर्थ मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौड़ेल ने कहा कि नागरिकों की जीवन रक्षा और आर्थिक गतिविधि को साथ साथ आगे बढ़ाने के अपनी हर संभव कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक सुशासन, वित्तीय अनुशासन और सदाचार जैसी विषयों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि नेकपा के महासचिव समेत रहे अर्थमंत्री पौड़ेल इससे पहले भी अर्थ मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसी तरह अपना पदभार ग्रहण करते हुए प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग ने सूचना को विश्वसनीय और मर्यादित बनाने के लिए सभी से समन्वय और सहकार्य करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। मंत्रालय में आज पदभार ग्रहण करते हुए मंत्री गुरुंग ने सूचना को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह नवनियुक्त शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ने भी आज ही पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि वे शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारियों और दायित्व को अवसर के रूप में लेते हुए विकास निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति भंडारी ने नवनियुक्त मंत्रियों को आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल, शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ ने आज विशेष समारोह में शपथ ग्रहण किया। समारोह में प्रधानमंत्री, सभामुख और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्षों की उपस्थिति रही। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15
बजारमा नयाँ कि थाहैन। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाइ।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाइ।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई ने भ्रमण वर्ष 2020 सरकार एवं पर्यटन व्यवसाय संघ संस्थाओं के द्वारा की गई गृह कार्य के बावजूद कोविड 19 के कारण अभियान सफल नहीं हो सकने की बात कही है। आज पोखरा में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भट्टराई ने बताया कि कोविड 19 के कारण पर्यटन में मासिक 10 अरब का घाटा हो रहा है। मौके पर गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने वर्तमान समय में सुरक्षा के मापदंडों का अवलंबन कर आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन में जोर देने की बात कही। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित 268 मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताओं की नामावली आज सार्वजनिक किया है। आयोग के अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ने बीते 20 सालों से सिफारिश किए गए नामावली को सार्वजनिक किया। अब तक 1195 का सिफारिश के आधार पर और क्रियान्वयन की अवस्था को मूल्यांकन के आधार पर इन नामों को तय किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता वेद भट्टराय ने दी। प्रदेश नंबर एक सरकार के मुख्यमंत्री शेरधन राय ने प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर में आज आयोजित कार्यक्रम में उद्धार कार्यों में प्रयोग करने के लिए प्रदेश की 11 जिलों की 11 स्थानीय तहों को 11 दमकल और 14 वेन हस्तांतरित किया। कुछ दिनों के बाद और 3 प्रहरी वेन हस्तांतरित किया जाएगा। ये जानकारी आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के कार्यक्रम संयोजक रवि खनाल ने दी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सामान्य सरदर्द के बाद ह्याम्स अस्पताल पहुंचे अध्यक्ष थापा का कोविड 19 का पीसीआर परीक्षण किया गया था और इसका रिपोर्ट पॉजिटिव दिखा है। ये जानकारी उन्होंने सामाजिक संजाल ट्विटर के जरिए दी। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी से सुरक्षित और सतर्क रहने का आग्रह किया है। वे अभी बूढ़ा नीलकंठ स्थित अपने निवास स्थान में आइसोलेशन में रह रहे हैं। ये जानकारी पार्टी सचिवालय सदस्य राजाराम बरतौला ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,88,64,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,91,87,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 10,98,000 से अधिक लोगों की जान भी चली गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, जहां 81,65,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,22,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह भारत में 73,11,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,11,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह ब्राजील में 91,42,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,51,000 से अधिक लोग ब्राजील में 51,42,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,51,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह रूस में 13,54,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 23,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। और स्पेन में 9,37,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 33,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। देशभर में आज 3,749 संक्रमण के नए मामले आए सामने। 3,764 हुए संक्रमण मुक्त, 19 संक्रमितों की हुई मौत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नवनियुक्त 3 मंत्रियों को दिलाई गई पद तथा गोपनीयता की शपथ। नवनियुक्त मंत्रियों द्वारा आज ही पदभार ग्रहण। नवनियुक्त अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल ने कोरोना प्रभावित देश की अर्थतंत्र को ऊपर उठाने को बताया अपनी पहली प्राथमिकता। और कोरोना संक्रमण के कारण दुनिया भर में मरने वालों की तादाद हुई 10,98,000 से अधिक। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।